ओम शांति। आज हम सभी के मध्य अवध की धरनी से आदरणीय मीना दीदी जी उपस्थित हैं। हम आपका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय दीदी जी ने बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात किया, उन धारणाओं को जो परमात्मा पिता ने आकर के साकार माध्यम से हम सभी को बताया, अपने जीवन में संजोया, संवारा और कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। उन धारणाओं के आधार पर, इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए यज्ञ के बड़ों ने और आपने स्वयं इस ईश्वरीय मार्ग को अपने जीवन में चुना और पिछले 35 वर्षों से आप अपने समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, विशेष उरई में और आसपास के क्षेत्रों का आप विशेष संचालन कर रहे हैं। अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण आदरणीय मीना दीदी जी अनेकानेक आत्माओं का ज्ञान और योग के द्वारा विशेष पालना करती हैं और आज हमारे मध्य भी उपस्थित हैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए। हर सांस पर आपने गुनगुनाना सीख लिया, हर हाल में आपने गुनगुनाना सीख लिया, जिंदगी के हर राज पर मुस्कुराना सीख लिया। लोग व्यर्थ ही गरूर में सर उठाकर चलते हैं, आपने तो सजदे में सर झुकाना सीख लिया, सजदे में सर झुकाना सीख लिया। ऐसे नम्रता निरहंकारिता की धनी आदरणीय मीना दीदी जी।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मधुबन पावन भूमि पर हम सभी नुमा शाम में यहाँ एकत्र हुए हैं, क्योंकि मधुबन एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर पैर रखते ही आत्मा पावन बन जाती है। मधुबन तीर्थ स्थान है, सभी तीर्थों में तीर्थ महान आबू तीर्थ। तो ऐसे तीर्थ स्थान पर आकर प्रत्येक आत्मा पावन बन जाती है, क्योंकि ये पावन भूमि है और इस पावन भूमि में आकर हर आत्मा यही चाहती है कि हम आत्माएं कैसे पावन बने, कैसे श्रेष्ठ बने। ये ब्राह्मण जीवन पुरुषार्थी जीवन है और इस पुरुषार्थी जीवन में हमारे को बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हम आत्माओं को दी हैं। केवल हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि हम ब्राह्मण हैं और पुरुषार्थी हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण जीवन में छोटी छोटी बातें हमारे जीवन के पुरुषार्थ में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। लक्ष्य तो हम यही लेकर चलते हैं कि हमें बाबा ने संपूर्ण बनाने के लिए जगाया है, जाग गए हैं। जागने के साथ साथ छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो जिस लक्ष्य को हम लेकर चल रहे हैं वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा। और वे छोटी छोटी बातें कौन सी है, छोटी छोटी बातों में, जैसे हम लेट हो जाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा व्यर्थ सोचना, ये छोटी छोटी बातों में ही आ जाता है। अपने जीवन काल के अंदर हमें ये लक्ष्य बना देना है कि जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं कि छोटी बातों को समझकर हम इग्नोर कर देते हैं, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन वह छोटी बात ऐसी ही है जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, और उस बर्फ के टुकड़े को जब हम पानी में डालते हैं तो एक भाग ऊपर रहता है और तिहाई भाग पानी के अंदर रहता है। जिसे हम छोटी बात समझकर इग्नोर कर रहे हैं उसका विस्तार बहुत है, बहुत विस्तार है। मान लीजिए एक लेट होने की आदत है, लेट क्लास में आना, लेट अमृत बेले उठना, लेट भोजन करना, लेट, ये आदत है, और इसको हम छोटी सी गलती मानकर चलते हैं कि हमारी छोटी सी गलती है, छोटी सी तो बात है। शायद आपको पता हो कि जब कैंसर है होता है तो छोटी सी एक फुंसी होती है ऊपर से, लेकिन अंदर अंदर वो सारी जड़ें पूरे शरीर में या जहां पर है वो अपना पूरा फैलाव कर देता है। और हमने क्या समझा, छोटी सी फुंसी तो है। इसी तरह से मान लीजिए कहीं पर आग लग गई और आग लगने में हम 5 मिनट जो बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को आना था वो 5 मिनट लेट हो गया। हमने कहा 5 मिनट ही तो लेट है, लेकिन उस 5 मिनट के कारण से पूरी बिल्डिंग, पूरा सामान, जरूरी कीमती सामान, वो सब क्या हुआ, सब जलकर राख हो गया। एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में हम 5 मिनट केवल लेट हो गए उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और 5 मिनट में ही उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा 5 मिनट पहले अगर आप आ गए होते तो इसकी जान बच जाती, 5 मिनट केवल आप लेट हो गए। तो ये जो छोटी छोटी सी बात है लेट होने की, तो ये बातें ही हमारे पुरुषार्थ में अलबेलापन, आलस, ये सब पैदा कर देता है। तो हम अपने ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम सफलता को प्राप्त करें, तो हमें परहेज बहुत जरूरी है। व्रत लेते हैं ना, अभी करवा चौथ का व्रत आ रहा है, कई माताएं हमारी करेंगी व्रत। तो व्रत क्या है, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा। तो इस करवा चौथ में आप एक प्रतिज्ञा जरूर कर लेना, मैं आज आपको बता देती हूं कि वो प्रतिज्ञा हमें क्या करनी है। एक बार कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, तो वह व्यक्ति अपनी जीवन चला रहा था, अपनी फैमिली में एडजस्ट था, चल रहा था। उसे नहीं पता था, उसने अपने जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाया, बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मेरी अंतिम जीवन, अंतिम क्षण कौन सा होगा, किसी को पता नहीं होता, उसे भी पता नहीं था। और एक दिन क्या हुआ कि उसे यमराज लेने आ गए। अब जब यमराज लेने आए तो यमराज भी परेशान कि ये व्यक्ति तो मुझे पहचान ही नहीं रहा, मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये मुझे पहचान नहीं रहा, मैं कैसे ले जाऊं इसे। तो यमराज ने कहा कि चलो इससे बात करते हैं। यमराज ने उससे कहा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? कहा पिला सकता हूं। वो गया, एक गिलास पानी ले आया और उसे पिला दिया। जैसे ही पानी पिया तो यमराज तो बहुत खुश हो गए। अब वो और चिंता में आ गए कि अब मैं, इसने तो मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया है, अब मैं इसे कैसे ले जाऊं, कैसे बताऊं। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तो यमराज ने कहा कि सुनो, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? वह व्यक्ति बोला, मैं तो नहीं जानता। कह, मैं यमराज हूं और मैं तुम्हें लेने आया हूं, लेकिन तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करता हूं। और वह कृपा क्या है कि देखो, मेरे पास कई लोगों के जीवन का ये पत्रा है मेरे पास, और इस पत्रा में तुम्हारा भी नाम है। तुम्हारा टाइम क्योंकि पूरा हो गया है, इसमें तुम्हारा भी नाम है, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए तुम्हें मोहलत देता हूं, और इस 5 मिनट में जो तुम्हारा पत्रा तुम्हारे नाम का है, इसमें तुम जो कुछ भी लिखना चाहो, जैसा भी तुम लिखना चाहो अपने प्रति, तुम लिख सकते हो और मैं तथास्त कर दूंगा। कहे, वो तो बड़ा खुश हो गया। कहे, यमराज मुझे लेने आया और 5 मिनट की मुझे मोहलत दिया है, तो मैं तो 5 मिनट में जाने कितना लिख दूंगा, क्या क्या लिख दूंगा अपने बारे में, जाने कितना अच्छा भाग्य बना लूंगा। कहे, ठीक है। उसे वो पत्रा दे दिया। जैसे उसके हाथ में पत्रा आया और फर्स्ट पेज उसने खोला, तो फर्स्ट पेज खोलते ही उसके रिश्तेदार का नाम आ गया, और उस रिश्तेदार के नाम में लिखा हुआ था कि कल ये बहुत बड़ा मंत्री बन जाएगा, बहुत बड़ा। तो उसके मन में आया, ये तो रिश्तेदार बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये कल मंत्री बन जाएगा, इसको बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। और उसके पत्रा में उसने लिख दिया कि इसको बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार आदमी, इसको बनना ही नहीं चाहिए, उसके पत्रा में लिख दिया। अभी दूसरा पन्ना खोला, दूसरा पेज। जब दूसरा पेज खोला तो उसमें देखा कि उसका दोस्त आ गया, उसमें लिखा हुआ था कि कल इसको बहुत बड़ी लॉटरी मिलने वाली है। अरे वाह, इसको लॉटरी मिलने वाली है, और ये तो बहुत दगेबाज है, बहुत धोखेबाज है, इसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और उसमें उसने लिख दिया कि इसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वो पत्रा खोलता गया और सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखता चला गया। फिर जब उसका टाइम आया लिखने का, उसका पत्रा में नाम आया, तो जैसे उसने अपना पत्रा देखा और पेन उठाया, कह रहे वाह, अब तो मेरा पत्रा खुल गया, अब मैं इसे बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा। और जैसे लिखने को हुआ तो उससे वो पत्रा यमराज ने छीन लिया और कहा, टाइम आउट। उसका टाइम क्या हुआ, जब उसका लिखने का समय आया तो टाइम आउट हो गया। 5 मिनट के टाइम में जो उसने सोचा था कि मैं अपने बारे में बहुत कुछ अच्छा हम लिख देंगे, बहुत अच्छा हम अपने भाग्य को बना लेंगे, लेकिन वो तो नहीं बना पाया ना। क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि वह दूसरे के पत्रा को देखता रहा, दूसरे के बारे में लिखता रहा। कहीं यही गलती हम भी तो नहीं कर रहे हैं? इस ब्राह्मण जीवन के अंदर ये भाग्य बनाने की बेला, ये संगम युग हमें मिला है अपने भाग्य को बनाने के लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए। क्योंकि संगम युग में हर आत्मा अपना अपना भाग्य बनाती है, तो मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए ये भगवान ने समय दिया। अब ये अपना भाग्य बनाते बनाते कहीं हम दूसरे के पत्रा में तो नहीं चले जाते हैं, वो फलाना ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी बिल्कुल उन्नति नहीं होना चाहिए, इसको सफलता नहीं मिलना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए। कहीं हम भी तो इस चक्कर में नहीं पड़े? क्योंकि अगर हम इन्हीं चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा जो टाइम भगवान ने हमें दिया है, और वैसे भी आप लोग तो बहुत लेट हो, टू लेट तो नहीं हो लेकिन लेट तो है, तो हमें जो चांस मिला है अपने भाग को बनाने का, तो हमें व्यर्थ की इधर उधर के पत्रा में अपनी बुद्धि को नहीं ले जाना। ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है, ये छोटी सी भूल है, छोटी सी गलती है, लेकिन ये गलती हमारे भाग को तकदीर में लकीर लगा सकती है। देखो, छोटी छोटी गलती में ही जैसे आता है कि अपने जो दशरथ जी के बारे में अपने शास्त्रों में दिखाया कि दशरथ जी से एक धोखे में गलती हुई थी, शब्द वेदी बाण चलाया जिसमें श्रवण के बारे में बताते हैं कि उसकी डेथ हो गई थी। तो छोटी सी गलती थी और अनजाने वाली गलती थी, जानबूझ के नहीं था, अनजाने की गलती का परिणाम भी उसे ऐसा ही मिला, उससे बल्कि भयानक मिला कि पुत्र के वियोग में दिखाते हैं कि उसे भी अपने शरीर को त्यागना पड़ा। एक छोटी सी तो गलती थी। तो ये छोटी छोटी गलतियां मनुष्य के जीवन को, ब्राह्मण जीवन को संवरने नहीं देती है, सजने नहीं देती है। तो हमें इन बातों में अपनी बुद्धि को बचाना। कई लोग को हमने देखा है कि कोई सेंटर में सेवाएं करते हैं, भाई भी करते हैं, माताएं भी करती हैं, सेंटरों में सेवा करती है, मधुबन में भी सेवाएं कर रही है, तो क्या करती है, आपस में बातें कर करके। और जब उनसे हम पूछते हैं कि आप क्या बात कर रहे थे, तो क्या कहती है, हम बाबा की ही बात कर रहे थे, हम बाबा की ही बात कर रहे थे। अच्छी बात है, बाबा की ही बात कर रहे थे, लेकिन जब बाबा की ही बात कर रहे थे तो बाबा की बातें बाबा से क्यों ना करें। ये ऐसे कहीं होता, हमारी बात आप किसी दूसरे से करो, बाबा की ही बातों को बाबा से ही करें ना हम, तो हमारी स्थिति कैसी होगी, कैसे बनेगी, हमारा पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा, अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा ना। तो बाबा की बात को बाबा से ही करना सीखें, क्योंकि अब वो समय गया कि हम आपस में हम बाबा की बातें कर रहे थे, आपस में बाबा की बातें नहीं कर रहा है, बल्कि बाबा की बात को बाबा से ही करना है। तो जब बाबा की बात को बाबा से करेंगे तो हमारी स्थिति भी अच्छी बनेगी, और बाबा की बातें आपस में करते हैं तो क्या होता है, स्थिति बनती है उस समय, आप बताओ स्थिति बनती है उस समय, क्योंकि हम आवाज में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, और बाबा की बातें करते करते ही बीच में माया की बातें भी क्या होती है, मिक्स हो जाती है, हो जाती है ना, माया की बातें भी मिक्स हो जाती है। लेकिन जब बाबा की बात बाबा से ही करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी माया की मिक्सरटी नहीं होगी, माया की बातें आएंगी ही नहीं। तो ये जो हम सोचते हैं कि हम बाबा की बातें कर रहे थे, लेकिन सच्चाई अगर देखा जाए तो ये मन मत में ही आ जाता है। सीता के बारे में भी आता है कि सीता को वो बात मना की गई थी कि तुमको मर्यादा के बाहर नहीं जाना, लेकिन उसने छोटी सी भूल कर दी। क्या छोटी सी भूल कर दी उसने, कि वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर गई, लांग गई। तो सारा जीवन सीता का कैसे बीता, क्या वो भगवान से राम से मिल पाई, नहीं मिल सकी। सारा जीवन उसका, सीता जिसका सारा जीवन रोते रोते बीता, सारा जीवन वो महारानी नहीं बन सके, वो राज घराने में नहीं जा सके, यहां तक कि अंतमति भी उसके रोते रोते ही धरती में वो समा भी गई, एक मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण। यहां तो हम जानबूझ के कितनी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते, छोटी छोटी बातों के आधार से कितनी सारी बातों का हम जीवन के अंदर उल्लंघन करते रहते हैं। तो ये जीवन में जो भगवान ने, बाबा ने हमें मर्यादाएं बताई हैं, अमृत बेले से लेकर रात तक की जो हमें मर्यादाएं बताई है, उस मर्यादा में ही हमें अपने जीवन को लेकर चलते जाना है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को केवल ज्ञान सुनाया नहीं है, ज्ञान सुनना एक अलग बात है और ज्ञान से जाग जाना एक अलग बात है। तो ज्ञान ने हमें जगाया, क्योंकि ज्ञान पढ़ाई है और योग स्नान है। तो ज्ञान ने हमें जीवन में जगाया। तो अब अपने आप को हमें देखना है कि हम जागे हुए हैं, हमें आत्मा का ज्ञान हुआ है, परमात्मा का ज्ञान हुआ है, लेकिन हम आत्मा के ज्ञान से हम आत्माएं जाग गईं। जागना माना स्मृति में रहना। जैसे कोई जाग जाती है आत्मा, तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, हम इस मकान में रह रहे हैं, ये हमारा सामान है, ये हमारे लोग हैं, है उसे कहेंगे ये जाग गए। एक होता है जाग तो गए है, जाग गए, लेकिन वो अनकॉन्शियस में है। जैसे उसे पूछो ये सामान कहाँ रखा, पता नहीं है, कहाँ पर हो पता नहीं है। अब उसे ये मालूम कि हम जाग गए, तो क्या उसे जागना हम कहेंगे? उसे जागना नहीं कह सकते। जागना माना सारी बातों की स्मृति आ जाना। तो हमें आत्मा की स्मृति कितनी रहती है? तब तो हम जागे हुए हैं। अगर बार बार आत्मा की विस्मृति होती, बार बार विस्मृति में चले जाते हैं। मैंने देखा है कि अभी अभी तो हम जाग गए, अपने को मैं आत्मा हूं कहने लगे, और जैसे ही बाहर गए तो सब बातें हमारी आत्मा है भूल करके जोर आवाज में बोलना चालू कर दिया, व्यर्थ की बातें बोलना चालू कर दिया। तो क्या इसको कहेंगे हम जाग गए? इसको कहेंगे हम जागे हुए हैं? इसको जागे हुए नहीं कह सकते। तो जागने का मतलब है कि हर समय वो हमारी स्मृति में रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को हर समय ये स्मृति थी कि मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण था नहीं, बल्कि उनको ये स्मृति रहती थी कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। हर समय उन्हें ये स्मृति रहती थी। तो उनकी एक्टिविटी कैसी थी? कृष्ण जैसी है, बताती है हमारी बड़ी बहने, हमारी दादियां भी बताती है कि कभी कभी ब्रह्मा बाबा मिचनू बन जाते थे, घुटने के बल चलने लगते थे, और घुटने के बल चलते चलते जब दादियां कहती थी कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, तो बाबा कहते थे मैं मिचनू हूँ, मैं मिचनू हूँ। तो वो घुटने के बल चलना और इसी वेशभूषा में अपने आप को रखना, तो ये ब्रह्मा बाबा को हर समय ये स्मृति थी। तो स्मृति होने के कारण से बाबा की स्थिति भी वैसी ही बनती चली गई। आज हमारी स्थिति क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि बार बार हम स्मृति और विस्मृति में चले जाते। गीता में भी आता स्मृति लब्धा हाँ नष्टो मोहा। जब व्यक्ति को स्मृति आ जाती है तो बाहर की सारी बातों से उसको क्या हो जाता है? वैराग। नष्टो मोहा, उसका मोह भी दुनिया की बातों से, व्यर्थ बातों से, व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थ से, वो सब यूज तो करता है, लेकिन यूज करते हुए भी वो सब बातों से विरक्त रहता है, उसे किसी प्रकार का आकर्षण नहीं रहता है। और हम सबको भी स्थिति कैसी बनानी है? ऐसी तो बनानी है ना, क्योंकि वापस जब जैसे हम परम धाम से हम आत्माएं जब आई थी तो कैसे आए थे? क्या हम जब परम धाम से आए तो हमारे अंदर किसी के प्रति कोई अटैचमेंट था क्या? कहीं लगाव था क्या? हमें कहीं कहीं पर हमारा झुकाव, प्रभाव, इन सब बातों में थे क्या? नहीं थे। तो जब ऊपर से आई थी आत्मा एकदम संपूर्ण सतो प्रधान, पूरी बैटरी चार्ज, किसी रिंचक मात्र भी हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई नहीं थी, संपूर्ण अवस्था। और जब यहां से हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जैसे आए थे वैसे ही हमें जाना भी है। तो वैसे ही जब जाना है तो सब व्यर्थ बातों से, पुरुषार्थ क्या है, सब व्यर्थ बातों से अपने आप को बचाना है। और सब व्यर्थ बातों से हम तभी बचा पाते हैं जब हमारे अंदर ये स्मृति रहे, बार बार ये स्मृति रहे कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। दिन में हम कई बार इस चीज का चिंतन करें। केवल योग के समय हम बैठते हैं, योग के समय बैठे और बैठकर हमने शुरू कर दिया मैं शांति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। योग के समय तो हमने करना शुरू कर दिया, लेकिन सारे दिन में अपने आप से खुद ही आप अपना चार्ट देख सकते हो कि सारे दिन में हमारी स्मृति या हमारी स्थिति कैसी रहती, चलते फिरते, क्योंकि मधुबन में हम आए हैं। तो अगर मधुबन में हमने ये स्थिति नहीं बनाई, इतनी आवाज से जाना, इतनी आवाज से आना है, आपस में जब भोजन करते हैं तो भोजन में भी बैठ करके बातचीत करना,
पुरानी दुनिया की बातचीत करना, ये सब चीजें मधुबन के अंदर हमें नहीं करना है। इतना खर्चा करके हम लोग यहाँ पर आते हैं, इतना समय भी देते हैं, इतना सारा कुछ आकर के करते हैं, लेकिन अपने इसलिए हम करते हैं कि हमारी स्थिति बन जाए, इसीलिए तो करते हैं। जो लोग चाहते कहते हमारी स्थिति बन जाए वो हाथ उठाओ, सब चाहते हैं कि मधुबन में आकर हमारी स्थिति अच्छी बन जाए। तो मधुबन में स्थिति हमारी अच्छी तभी बनेगी जब यहाँ पर हम चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये स्मृति बनी रहे, ये स्मृति हमारी आंखों में, हमारे बोल में, हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में ये स्मृति बनी रहे कि मैं कौन हूँ। जैसे दादी जी हमेशा यही प्रश्न करती सभा में आती है तो हमेशा यही हमेशा तीन बातें बोलती, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, ये तीन बातें हमेशा हमें याद रहे। तो तीन बातों में मैं कहती ये पहली बात ही केवल याद रहे कि मैं कौन हूँ, है 10 बार चलते फिरते उठते बैठते 10 बार यही अंदर में आए कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो हमारी स्थिति बने कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बार 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 मधुबन के अंदर, क्योंकि यहाँ आपको ना खाना बनाने की चिंता है, ना आपको सफाई करने की चिंता है, ना आपको कि गृहस्थी की चिंता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, यहाँ पर आप चिंता मुक्त है। तो चिंता मुक्त के साथ साथ हमें चिंतन युक्त बनना है, श्रेष्ठ चिंतन युक्त है। चिंतन से भी हमें मुक्त नहीं हो जाना, श्रेष्ठ चिंतन से मुक्त नहीं हो जाना है, श्रेष्ठ चिंतन हमारा हमेशा बना रहे चलते फिरते उठते बैठते। जैसे यहाँ पर टोल लेने भी आते हैं, सौगात लेने भी आते हैं, बस मौन अंदर में अब यही स्मृति बनी रहे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ। आकर के देखना, जब आप बार बार अपने को कहेंगे कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, 10 बार आपने एक टाइम पर 10 बार अगर ये चिंतन कर लिया मैं महान आत्मा हूँ, अंदर से ये रियलाइज कर लिया, तो देखिएगा कि आपकी स्थिति मधुबन के अंदर कैसे श्रेष्ठ बन जाती है, कितनी महान बन जाती है। और यही स्थिति को लेकर हमें सेंटरों में जाना है, अपने घर में भी जाना है, क्योंकि समय को देखते हुए जिस प्रकार का ये समय चल रहा है, जिस प्रकार का ये वातावरण बनता जा रहा है दुनिया के अंदर, तो ऐसे वातावरण के लिए ये हमारी अंतिम तैयारी है। थोड़े समय में हमें अपनी अंतिम तैयारी करनी है, तो अंतिम तैयारी करने के लिए जो बाबा के अंत के महावाक्य थे, ब्रह्मा बाबा ने जो अंत में हमें महावाक्य दिए थे, 3 बातों के महावाक्य दिए थे, याद है आप लोगों को 3 बातें याद है? किसको किसको याद है? अच्छा, तो 3 बातें हैं, कौन सी 3 बातें? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ये अंतिम समय का ब्रह्मा बाबा का ये पुरुषार्थ था, ये अंतिम समय का। तो हमारा भी ये समय कौन सा चल रहा है? सभी का चल रहा है, अब तो सभी का ये अंत समय चल रहा है, किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ कौन जाता है, कौन क्या कर रहा है। अभी अभी हम देखते अकाली एकदम बैठे रहते हैं, उसे कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, और रात को अच्छे से भोजन करके बैठे और सुबह पता लगा है ही नहीं, चले गए। तो अभी तो ऐसा समय चल रहा है, तो ऐसे समय पर हमें अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। तो श्रेष्ठ स्थिति हमारी बने, अब बाबा तो बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण परिवार भी, हमारी बड़ी बड़ी दादियां भी, दीदियां भी हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन हम भी तो तैयार हो। बाबा ने हमें इतने स्वमान दिए, कितने श्रेष्ठ स्वमान दिए। तो स्वमान, स्वमान क्या है? पहले स्व को मान, जैसे बाबा ने कहा कि तुम मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये रियलाइज करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अब बाबा ने कहा कि तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो, ये स्वामान दिया। तो स्वामान माना, स्वामान पहले स्वयं मान कि हाँ मैं ऐसा हूँ, क्योंकि जब तक हम स्वयं इस बात को नहीं मानते कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जब तक ये स्वयं हम नहीं मानते तो हमारी स्थिति कैसे बनेगी, हमारा पुरुषार्थी जीवन श्रेष्ठ कैसे होगा। तो पुरुषार्थी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, स्थिति को अच्छी बनाने के लिए, हमें पहले स्वयं को अपने आप से तैयार करना है कि हाँ मुझे अपने आप को बनाना है। कहते एक बार है, एक कहानी में आता है, कहते एक बार क्या हुआ कि एक राजा था और राजा ने अपने नगर में एक ढिंढोरा पीटा हुआ था कि हमारे नगर में कोई भी भिखारी भीख मांगे नहीं, कोई भी भीख ना मांगे, अगर कोई भीख मांगता है तो उसे हमारे राज दरबार में ले आओ। एक दिन क्या हुआ कि राजा ने ढिंढोरा तो पिटवा दिया, लेकिन पीटने के बाद राजा स्वयं ही अपने नगर में गया देखने कि जाकर देखे कोई भीख तो नहीं मांगता। जब वो गए वहां पर तो एक छोटी सी एक माता थी, बूढ़ी माता, और वो भीख मांग रही थी। तो राजा को बड़ा ताजुब लगा कि मैंने नगर में ढिंढोरा पीटा था कि कोई भीख नहीं मांगना और ये भीख मांग रही है। तो बूढ़ी माता नहीं थी, मतलब ऐसी थी बहन, तो उसे उधर ले गए राजा लोग, उसको पकड़ के ले गए। राजा ने कहा सैनिकों को इसको ले चलो राज दरबार में ले आए। जैसे राज दरबार में उस बहन को लेकर आए भिखारी माता को, तो राजा ने कहा कि देखो मैं आज अनाउंस करता हूँ कि ये जो भिखारी माता है आज से ये मेरे यहाँ की राजकुमारी बनकर रहेगी और इसको हम अपने महलों में ही रखेंगे। तो सभी लोगों ने कहा भाई राजा ने अनाउंस किया है, चलो इसको महल में ले चलो। उस भिखारी माता को महल में ले गए और महल में ले जा करके उसको दूध से नहलाया धुलाया और चंदन वंदन खूब लगाकर उसका उपटन करके उसको एकदम तैयार किया, उसे जेवर भी पहना दिए, बहुत सारे जेवर पहनाकर अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनाए और एक रूम दे दिया। वो रूम इतना सुंदर, पलंग वहां पर पड़े हुए बहुत सुंदर, सोने का ग्लास चांदी के बर्तन सारा कुछ उसे दे दिया। और जब वो अपने महल में बैठ गई तो उसे भोजन भी 56 प्रकार का भोजन आया, क्योंकि राजा की वो क्या बन गई थी, राजकुमारी, तो कहा इसको 56 प्रकार का भोजन लेके चलो। जब वो भोजन लेकर उसके पास पहुंचे तो उसने जैसे ही भोजन देखा तो उसने कहा यही रख दो, ये भोजन यही रख दो, आप लोग जाओ। अब राजकुमारी कह रही है जाओ, तो सारे लोग चले गए, जितने नौकर थे सब चले गए वहां से। अब राजकुमारी ने जैसे ही वो भोजन देखा तो संस्कार तो उसका भिखारीपन का था, तो उसने क्या किया कि सारे जो बर्तन थे सारे बर्तन गिरा दिए और सारा भोजन गिरा दिया जमीन में ही, और सारा जेवर फेंक दिया, अपने कपड़े भी फाड़ दिए, और जो रोटियां घी में लगी हुई थी वो दीवालों में चिपका दी, दीवालों में चिपकाकर अपने कपड़े फाड़ कर और वो रोटियों के आगे ऐसे खड़ी हो गई और कहती कोई रोटी दे दे, कोई रोटी दे दे, वो उसी के आगे रोटियों के आगे ऐसे मांगने में लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद जो थे सर्वेंट नौकर थे दास लोग थे, उन्होंने कहा राजकुमारी ने भोजन कर लिया होगा, चलो चलते हैं बर्तन उठा लाएं। जैसे वो अंदर कमरे में गए तो कमरे का हाल तो एकदम खराब था, सारा भोजन जमीन में पड़ा हुआ था, कपड़े पूरे फटे हुए थे, जेवर सब जमीन में पड़े हुए थे, रोटियां दीवालों में चिपकी हुई थी, बिस्तर सब खराब हो गए थे। तो उन लोग को लगा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने जाकर राजा को मैसेज किया, राजा से कहा कि वो राजकुमारी ने तो ऐसा किया हुआ है। राजा खुद चल करके आए कमरे में और कमरे का हाल देखा, तो राजा ने जब जैसे ही देखा तो राजा के मन में विचार आया कि मैं इस भिखारी को राजकुमारी बनाना चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ये राजकुमारी बन जाए, लेकिन जब यही नहीं चाहती कि मैं राजकुमारी बनूं तो मैं इसको राजकुमारी कैसे बना सकता हूँ। तो तो राजा ने क्या किया कि उसको कहा जाओ इसको जहां से आई थी वहीं भेज दे, इसको उसको वहीं पर भेज दिया गया। इसी तरह से भगवान हमारा सिंगार करते हैं, भगवान हमें देवी देवता बनाना चाहते हैं, भगवान हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाना चाहते हैं, देव आत्मा बनाना चाहते, भगवान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन हम भी तो बनना चाहें, हमारे अंदर भी तो वो संस्कार डेवलप हो, क्योंकि उसके अंदर तो वही संस्कार था भिखारीपन का, उसने सोचा ही नहीं कि मुझे राजकुमारी बनना है, इसलिए उसने अपने संस्कार पुराने वाले जागृत कर लिए और पुराने वाले संस्कार जागृत होने के कारण जहां से आई वहीं से भेज दिया गया। इसी तरह से बाबा ने हम बच्चों को इस कलिगी दुनिया से, नर्क की दुनिया से निकालकर हमें इतनी अच्छी दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया, इतनी अच्छी दुनिया में। लेकिन इतनी अच्छी दुनिया में आकर हम कहीं वो पुराने संस्कार जो हमारे पहले के संस्कार हैं, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुरानी बोलचाल, पुराना सुनना, पुराना देखना, पुराना ही सोचना, सारा निगेटिविटी, सारा निगेटिव जो पहले हमारा चलता था, अगर वही संस्कारों को लेकर हम चलते रहेंगे तो हम देवता कैसे बनेंगे? बनेंगे देवता? बन सकते हैं देवता? नहीं बन सकते हैं। तो हमें अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है, और वो संस्कार कैसे होगा? योग के माध्यम से। जितना हम बाबा को याद करते हैं, जितना हम याद करते और स्मृति में रहते हैं, उतने ही हमारे पुराने संस्कारों का संस्कार होता जाता है। तो हमें अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है इस करवा चौथ में। हमारी माताएं करेंगी? करेंगी? हाथ उठाए। पहले तो ये बताओ कौन कौन सी माता करवा चौथ करती है, हाथ उठाए थोड़ा। करवा चौथ का व्रत कौन कौन सी करती है? हाँ है, काफी माताएं हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हमें इस करवा चौथ के व्रत में आपको क्या करना है कि पुराने संस्कारों का संस्कार कर देना है, क्योंकि ये करवा चौथ जाने कितनी चौथे आती है, हैं? बहुत सारी चौथ हमने सुन रखी है और हमारी माताएं वो चौथ करती रहती है। एक हंसी की बात मैं बता दूं, चौथ के ऊपर ही है, बहुत हंसी की बात है कि ऐसी कोई ना कोई चौथ आता था और हमारी माताएं चौथ का व्रत करती थी। पंडित जी ने आकर बताया, एक माता जी को कहा कि देखो आज जो है ना, आज के दिन लुढ़क चौथ है, और लुढ़क चौथ के दिन क्या होता है कि लड्डू बनाए जाते देसी घी के, और देसी घी के लड्डू आप बना करके ऊपर छत में जो टीन लगा होता है ना, टीन सेट, तो उस टीन सेट से आप लुढ़काना, और जो लड्डू लड़केंगे, जो लुढ़क गए वो हमारे, और जितने अटक गए वो तुम्हारे। पंडित जी ने ऐसा बोल दिया। अब जो उसका माता का जो पति था वो बहुत परेशान था कि रोज कोई ना कोई चौथ का व्रत करती है, कोई ना कोई चौथ का व्रत करती है। उसने कहा आज देसी घी लेकर आना। उसके पति ने कहा आज क्या है? क्या आज है लुढ़क चौथ? क्या लुढ़क चौथ है, इसमें क्या होगा? क्या आप पंडित जी ने कहा है कि तीन सेट से लुढ़काना लड्डू देसी घी के, जितने लुढ़क गए वो पंडित जी के और जितने अटक गए वो हमारे। तो कहा ये बड़ी मूर्ख है, ये तो सारी लुढ़क जाएंगे और पंडित जी सारा उठा के ले जाएंगे। क्या ठीक है, अब ये मानती नहीं है। वो गया पति बिचारा, देसी घी लेकर आया, सामान लेके आया, उसे बड़ी मेहनत से लड्डू बनाया। जब तक वो लड्डू बनाती रही तब तक उसके पति ने क्या किया, टीन शेड में चढ़कर किनारे से टीन को मोड़ दिया उसे। अब जब बन गए लड्डू, पंडित जी आ गए, कथा चालू हो गई। कथा चालू होते ही अब चढ़ी वो माता ऊपर से लुढ़काने के लिए, पंडित जी नीचे और वो माता ऊपर, और जैसे उसने लड्डू लुढ़काए तो दो चार लुढ़क गए और बाकी सब अटक गए, बाकी सब लुढ़क गए। तो पंडित जी ने देखा कि ये तो लुढ़के ही नहीं, तो उसने कहा रुको रुको, अपना पत्रा हमको देखना है। कह क्या देखना है? कह देखते शायद कुछ गलती हो गई है। और देख कर कहा आज लुढ़क चौथ नहीं है, आज अटक चौथ है, और इस अटक चौथ में जितने लड्डू अटक गए वो हमारे और जितने लुढ़क गए वो तुम्हारे। और पंडित जी ने क्या किया कि सारे लड्डू लेकर चले गए। अब पति को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा अंदर चलो। अंदर लेकर गया पति, कह क्या बात है, कह देखो पंडित जी ने कहा था कि आज अटक चौथ है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज ना अटक चौथ है ना आज लुढ़क चौथ है, आज है धमक चौथ। और उसने खूब धमका पत्नी को, कहा आज धमक चौथ है। हाँ, तो उसने कहा कि आज से ये जितने भी व्रत करते हो ना तुम, ये जितनी कर रही हो, ये सब पंडित जी की बनाई हुई कहानियां, तो जाने कितनी चौथे आती हैं और हम लोग ऐसे ही व्रत करते रहते आज ये, लेकिन आज बाबा ने बच्चों को कितनी अच्छी बात बता दी भगवान ने कि सबसे बड़ी चौथ जो है कि जो चार युग है, ये चारों युग बीतने वाला है, और चारों युग बीतने के बाद जो संगम युग आया, चौथे युग में के बाद जो ये संगम युग आया, इस चौथ के चांद को, इस परमात्मा को, शिव परमात्मा को हम सभी ने प्राप्त कर लिया, इसलिए प्राप्त करने के बाद हमें अब कोई भी व्रत करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा चांदनी कहते नहीं, चांद का जो हमें मिला है, चौथ का चांद मिला माना परमात्मा मिल गया, इतना श्रेष्ठ हमें साजन मिल गया। अब साजन को पाने के बाद हम किस साजन की बात करें, वो छन्नी में देखते रहते, अरे मैं क्यों छन्नी में देखूं, मैं तो खुली आंखों से देखती रहती, मुझे छन्नी में देखने की जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर ही हमको पति मिल गया, पति परमेश्वर माना जो परमेश्वर है वही पति हमको मिल गया, उसके व्रत में सदा एक व्रत हमें करना है, एक मत होकर चलना है, एक व्रतधारी होकर चलना है, ऐसा व्रत हमें अपने जीवन के अंदर अपना लेना है। ठीक है, ऐसा ही व्रत करेंगे ना हमारी माताएं, हाँ ऐसे ही व्रत करना, तो ये अपने पुराने स्वभाव संस्कार ये भी आ जाते हैं, ये व्रत है आज, ये व्रत है पहले करते थे, आज भी हम वही करते हैं, तो क्या ये पुराने संस्कारों में नहीं आता, ये पुराने रीत रिवाजों में नहीं आता, ये पुरानी रीत, पुराने रिवाज, पुराने संस्कार, ये सब पुरानी कलिगी दुनिया के ही सारी बातें हैं। अभी हम संगम युग में आ गए, संगम युग में जो भगवान ने हमें मर्यादाएं बताई, संगम युग में भगवान ने जो हमें व्रत बताया, एक व्रता, एक व्रता माना एक के लिए ही हम जीते हैं, एक से ही सारे संबंध है, एक से ही सारे हम रस लेते हैं, एक से ही सारे हमारे संबंध हैं, तो इसलिए हमें एक के प्रति ही अपने जीवन को लेकर चलना, अपने जीवन के अंदर एक व्रता बनकर चलना, पति व्रता बनकर चलना, यही हमारा सबसे बड़ा व्रत है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही अपने संस्कारों को, अपने जीवन को हमें अच्छा पुरुषार्थी जीवन बना के हुए चलते रहना है, क्योंकि ये संगम युग में बहुत सारी चीजें हमको ऐसी ऐसी मिली हुई है, ऐसे ऐसे वरदान मिले हुए हैं, इन वरदानों को अभी अनुभव कर लो तो कर लो, बाद में ये आने वाले समय पर ये वरदान क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर की अंदर ही दब जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसका अंदर अनुभव नहीं किया, अंदर चिंतन नहीं किया, क्योंकि आगे आने वाली परिस्थितियां बताओ, मीराबाई को भी अपनी स्मृति कितनी रहती थी, कृष्ण की रहती थी, तो स्मृति की, कृष्ण की स्मृति होने के कारण उनकी स्थिति कैसी थी, जहर भी क्या बन गया, अमृत बन गया था ना, सूली जो सूली की सेज थी वो भी क्या बन गई थी, फूलों की सेज बन गई थी ना, तो जब उनकी कृष्ण की स्मृति में ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनी, हमें तो कृष्ण बनाने वाला जो कृष्ण का जो रचयिता है, कृष्ण को जन्म देने वाला है, हमें तो वो मिला है, तो हमारी स्थिति कैसी हो, कैसी हो, अंदर ही अंदर वो हमारी स्मृति हमें जो है वो बनी रहे, और इसी स्मृति के साथ हमें जागना है, इसी स्मृति के साथ हमें सोना है, इसी स्मृति के साथ खाना भी है, और इसी स्मृति में रहकर हमें आपस में बातचीत और व्यवहार करना है, तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
सच कहते